कल बाबा ने हम बच्चों को नया तरीका बताया है। नया तरीका बताया, नई नई इन्वेंशन होती है ना, तो हर साल बाबा नया तरीका बताते हैं। तो नया सीजन में नया तरीका क्या बताया? क्या तरीका बताया? तकदीर की लकीर खींचने का तरीका बताया। सेवा समाप्त हो गई, प्रारब्ध स्वरूप बनो, प्रसारत समाप्त, सेवा नहीं। ठीक, अच्छा, और मनसा सेवा करो। अच्छा, और मास्टर दाता बनो, और हैं महासहयोगी। अच्छा ठीक, महादानी, हाँ, और मास्टर दाता हो गया। ऐसा है कि किसी को भी कोई आदर्श बताया जाता है तो वो आदर्श को अपने अपने अनुसार फॉलो करता है, ठीक है ना। तो उसी बात को हर व्यक्ति अपने अर्थ से लेता है। जैसे बाबा ने कहा अब तुम्हारी प्रारब्ध शुरू है, प्रसारत खत्म, तो कई क्या समझते हैं कि बस अब तो यही प्रारब्ध शुरू है, सतयुग की देह, सतयुग में मौज करनी है, यहीं से शुरू करो, नहीं तो प्रारब्ध कैसे शुरू होगी, है ना। ऐसा भी होता है, कई पहले भी कहा करते थे, बोलो तुम काम भाव काम धंधा क्यों नहीं करते, मेहनत सतयुग में नहीं करना ना, तो हम मेहनत के संस्कार क्यों भरे अपने में है। इसलिए वो ऐसे प्रारब्ध वाले भी होते हैं, क्योंकि उसका अर्थ लेना है हर बात का, तो जैसी भावना वैसा अर्थ। तो जो बाबा ने कहा प्रारब्ध शुरू हो गई, प्रसारत खत्म हो गया, ये नई विधि है, ये नई विधि है, आपको बहुत सहज ढंग से संपूर्ण बनाने की। क्योंकि कोई चीज बार बार रिपीट करते रहो रिपीट करते रहो तो उसकी शक्ति निकल जाती है। प्रसारत कर रहे हैं, अच्छा प्रसारत हो रहा है, बस अब प्रसारत 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 प्रसारत। तो प्रसारत शब्द किसका है, सतयुग वालों का या त्रेता युग वालों का, किसका शब्द है प्रसारत? आज भी किसी ने खबर सुनाई, एक मंत्री था, वो अभी हम उसको पिछले महीने ही निमंत्रण देके आए थे, बड़ा खुश था, उसके बच्चे की शादी हुई थी, बच्चे को बुलाया, बहू को बुलाया, बोला देखो अभी इसकी शादी हुई है, अभी तो मैं नहीं आ सकता, अगली कॉन्फ्रेंस में आऊंगा। आज उसका हेलीकॉप्टर से एक्सीडेंट हुआ, मर गया। अच्छा, और अब कौन से युग में जाएगा, यहां आते आते रह गया। इसी तरह से शरीर का तो भरोसा नहीं है, तो इसलिए हमको अगर पुरुषार्थ करते करते ही पुरुषार्थी टाइटल के साथ किसी वक्त शरीर छूट जाए, चाहे हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल बना हुआ, फिर भी कोई गारंटी तो नहीं है ना कि शरीर नहीं छूटेगा, है डॉक्टरों का भी छूट सकता है। इस वास्ते आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अकाल मृत्यु कभी भी आ सकती है, और ये भी नहीं बूढ़ों की आएगी, कलयुग में तो बच्चे की भी आ जाती है, जवान की भी आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, और सारा ध्यान रखो तो एक्सीडेंट हो जाता है। जो इंग्लैंड की डायना थी उसका एक्सीडेंट ही हो गया, वैसे बहुत सेहत का ध्यान रखती थी, दौड़ लगाती थी, लेकिन क्या फायदा। इस वास्ते अगर उस टाइटल के साथ कहीं शरीर छूट गया, कौन सा टाइटल, पुरुषार्थी, तो सीधे कहां जाएंगे? तो बाबा ने कह दिया है कि ब्राह्मण से देवता है, क्षत्रिय से देवता नहीं है, ठीक है ना, कह दिया ना। इसलिए ब्राह्मण कौन, बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, या क्षत्रिय कुमार क्षत्रिय कुमारी, या पुरुषार्थ कुमार पुरुषार्थी कुमारी, क्या है? हाँ, तो अब बाबा ने ये कहा ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, मैंने ब्रह्मा के बच्चे। तो ब्रह्मा ने क्या किया, बाबा ने बोला कि फर्स्ट डे से ही ब्रह्मा ने कभी कहा मैं पुरुषार्थी हूं, नहीं, तरीका पता है, तरीके पे चल रहे हैं, मंजिल पता है, आपको कहीं जाना है यहां से मान लो आपको अबू रोड जाना है या अपने शहर में जाना है, तो आप चल रहे हैं तो ये थोड़ी कहेंगे मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, आप अपने रास्ते पे चल रहे हैं। ये ठीक है कि मंजिल पाने में और रास्ते में शुरू होने में टाइम है, लेकिन आप उस रास्ते पे चल रहे हैं तो आप ये थोड़ी कहेंगे मैं पुरुषार्थी हूं, आप तो मंजिल की तरफ जा रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने शुरू से लेकर अंत तक मंजिल की तरफ चले, लेकिन पुरुषार्थी थोड़ी कहा, ये बताया इसमें ऐसा होगा ऐसा होगा, उसको ऐसे ऐसे करते जाओ। पुरुषार्थी कौन कहता है? पुरुषार्थी वो कहता है जिसको मुश्किल लगता है, पुरुषार्थ कर रहे हैं क्या भाई होगा, कल आओगे क्लास में पुरुषार्थ करेंगे, अब क्या हुआ इसका मतलब है, ये काम करोगे पुरुषार्थ करेंगे। तो ये पुरुषार्थ शब्द ही फेल होने वालों का, क्योंकि बाबा ने बहुत समय तक देखा कि बच्चे पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी, पहले कहा चलती कला, फिर कहा उड़ती कला, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी पुरुषार्थी की पूछ लगी रही साथ में, है ना, इसलिए बाबा ने कल वो पूछ काट दी कि पुरुषार्थी शब्द यूज नहीं करना, तो क्या करना फिर यूज। तो बाबा ने तरीका भी बताया, ऐसे नहीं कि खाली बता दिया, ऐसे तरीका क्या बताया कि पुरुषार्थ के बाद क्या मिलता है, किसी भी चीज का पुरुषार्थ करो तो प्राप्ति, मेहनत के बाद फल। तो अब बाबा कहता है कि अगर तुम पुरुषार्थी पुरुषार्थी करते रहे और बीच में भी शरीर छूट गया या विनाश भी समीप आ गया है, उस वक्त भी तुम पुरुषार्थी ही रहे तो फिर तो सीधा तीर कमान वाले बन जाओगे। तो कुछ समय पहले पुरुषार्थ की प्रारब्ध जो है, जिसको कहा जाता है प्राप्ति, प्राप्ति स्वरूप बन के चलो। अब प्राप्ति स्वरूप बन के कैसे चले, है तो पुरुषार्थी, कहते हम पुरुषार्थी हैं, संपूर्ण नहीं बने, ये कमी वो कमी, तो कैसे चले। तो बाबा ने कहा कि आपने जितनी आत्माएं हैं हमारे देवता घराने की, कोई पहली बार थोड़ी आप यहां आके पुरुषार्थ कर रही हैं, आप पहली बार आए हैं नहीं, तो आप में कौन से संस्कार हैं। अभी आप आज के संस्कार देखोगे पुरुषार्थ के, ब्राह्मण जीवन के शुरू से देखोगे तो पुरुषार्थ के, जो पुरुषार्थी कहते हैं, अच्छा कलयुग के देखोगे तो उससे तो छूटने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो आपके अंदर सिर्फ यही संस्कार है क्या, आप कलयुग में अवतरित हुए क्या, नहीं, आप कब अवतरित हुए थे, सतयुग में, तो वो भी तो संस्कार है ना आपके अंदर, वो कौन से संस्कार है, सतयुग में पुरुषार्थ होता है नहीं होता। इसलिए बाबा ने कहा ये आपके हाथ में है, किसी व्यक्ति के पास पुराना ड्रेस हो और उसको नया ड्रेस भी मिल जाए, अब वो पुराना ही पहनता रहे कि पहले इसको खत्म करूंगा फिर नया निकालूंगा, वो पुराना उसका चलता ही रहे शरीर छूटने तक पुराना ही चलाता रहे, तो नया कब पहनेगा, नया तो उसके दाद और कोई पहनेंगे। इसी प्रकार से बाबा ने कहा आपके जो रेखाएं बाबा ने बताई हैं, लकीरें बताई हैं, अथवा आपके जो चिन्ह बताए हैं, तो बाबा ने कहा दो प्रकार के चिन्ह हैं, एक तो जो बाबा देखते हैं, बाबा हमारा क्या देखते हैं, बाबा बच्चों का संपूर्ण स्वरूप देखते हैं, और बच्चे अपना क्या स्वरूप देखते हैं, आज का स्वरूप देखते हैं। इस वास्ते उसको पूरा करने के लिए बजाय कब मेरी ये रेखाएं खत्म होगी, कब मेरी ये ठीक होगा, कब मैं फिर वो बनूंगा, कब 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 करते सदियां बीत गई। इसलिए बाबा ने कहा आसान तरीका क्या है, उसको मर्ज कर दो, उसको इमर्ज कर दो। ये तो आसान है, दोनों ही आपके पास, आपने क्या करना है, सिर्फ उसको यूज नहीं करना, उसको यूज करना है। अगर किसी के पास पुरानी चीज है भी लेकिन वो पुरानी चीज को यूज करना छोड़ दे, नई यूज करना शुरू कर दे, तो क्या होगा, पुरानी पड़ी 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 एक दिन कहेगा ये काम तो आती नहीं, इसको फेंको, है ना। अगर पुरानी को यूज उसी में वैल्यू देख रहा होगा तो नई उसकी पड़ी रह जाएगी। इस वास्ते बाबा ने कहा कि अपने प्रारब्ध वाले संस्कार, अपने संपूर्णता वाले संस्कार, उसको यूज करो, उसको इमर्ज करो, और पुरुषार्थ वाले संस्कार यूज नहीं करो, तो क्या होगा ऑटोमेटिक। तब बाबा ने कहा कि अपनी जो तुम्हारे को प्राप्तियां हैं, जो बाबा के द्वारा आपको मिली हुई क्या चीज है, वो क्या कहा बाबा ने, तकदीर जो है आपकी, उसको बार बार रिमाइंड करो अपने आप, क्या क्या मिला है, मिला तो है ना सबको, है ना, कि उसको याद में रखोगे तो जब तकदीरवान अपनी तकदीर को याद रखता है तो उसकी जो दूसरी होती है ना वो तकदीर आगे नहीं आती, वो नीचे दबी रहती है, ठीक है ना। अब कोई व्यक्ति मान लो दान पुण्य कर रहा हो, खूब पैसा लुटा रहा हो सुबह से शाम तक, तो कोई कहेगा इसके ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है, इसने तो लोन देना है किसी का, कोई मानेगा ही नहीं कि इसने लोन देना, कहेगा ये तो रोज दान करता है, इसके पास जरूर पैसा है तो दान कर रहा है। इसी प्रकार से अगर आप यही कहोगे पहले मैं अपना लोन उतारूं फिर मैं अपना दान का करूं तो नहीं होगा। तो तब बाबा ने कहा कि तुमको अपने पास से तो कुछ करना नहीं, अपना सोचोगे तो क्या करोगे, मेरे पास तो इतना है इतने में से दान करूंगा, होगा तो दान करेगा ना, तुमने तो बाबा से लेके दान करना है। जैसे यहां पर आप सेवाधारी हैं ना, कई लोग यहां सेवाधारी हैं, है अच्छा। अब सेवाधारी क्या करते हैं, बाबा का आटा, बाबा की तवा, बाबा की रोटी बनाई, बाबा के बच्चों को खिला दी, छुट्टी, आपने तो कुछ नहीं किया, अपने घर से तो आटा नहीं लाए, अच्छा तो उसमें आपको क्या मिल गया, सेवा का फल। इसी तरह से जो भी सेवाधारी है, बाबा का घर, बाबा के घर की संभाल करी, सुबह चौकीदारा कर दिया, बाबा का घर, बाबा के बच्चे, आपको तो सेवा का फल मिलना है ना। जैसे लोग दुनिया में भी नौकरी भी करते हैं तो अपना माल थोड़ी होता है, वहां सरकार का दफ्तर, वहां गए, ताला खोला, दफ्तर का काम किया, आ गए, कागज भी उनका, सब उनका, लोग भी उनके, काम भी उनका, आपको तो कमीशन मिलता है। इसी प्रकार से बाबा कहता है कि ये जीवन के अंदर भी अगर आप ये सोचो कि मैंने करना है, ये द्वापर के स्वामी साधु महात्मा मनुष्यात्मा यही धोखा खाते रहे कि मुझे करना है। अब तुम्हारी कितनी शक्ति है, आत्मा क्या है परमात्मा की भेंट में, कुछ भी नहीं है, अच्छा इस वास्ते अपनी शक्ति से करोगे तो रावण भी डराएगा, कि रावण कहेगा इससे तो मैं ताकतवर हूं ना, आपको डरा देगा। अगर छोटा बच्चा भी बाप की उंगली पकड़ के चलता है तो किसी से डरता है, जरा कुछ देखेगा तो उंगली जोर से पकड़ लेगा कि बाप तो है साथ। कुत्ते को देखेगा, किसी दुश्मन कोई और छोटा बच्चा डराने वाला देखेगा, अरे मेरा बाप साथ है, बस अकड़ के चलेगा छोटा बच्चा भी। तो जब हमको इस वक्त बाबा का साथ मिला हुआ है तो आपको तो कुछ करना ही नहीं, अपनी शक्ति, अपनी बैटरी को आप क्यों यूज करें, बैटरी तो आपने सतयुग से लेकर यूज करनी है, अभी तो आपने भर ली, उसके बाद तो आपने पावर हाउस से कनेक्शन करके पावर हाउस की बिजली यूज करो, इस समय आप बाबा आपके साथ है। इसलिए बाबा ने कहा है कि दाता के बच्चे, मास्टर दाता जो हैं, उनको बाबा से लेकर दुनिया को देना है। जैसे आप यहां सेवाधारी हो, टोटल जीवन में भी ऐसे ही ज्ञान बाबा का आपने दुनिया को देना है। आपको तो बीच में ही रहना है ना, आपने अपने पास से थोड़ी कुछ देना है जो आपका ज्ञान घट जाएगा, वैसे भी ज्ञान घटने वाली चीज नहीं है। इसलिए हम लेना छोड़ दें, तब बाबा ने दादी को भी जो सर्टिफिकेट दिए उसमें ये कहा है, इनको मुरलीधर की मुरली से प्यार है, मुरलीधर से प्यार, मैंने मुरली से प्यार, तो मुरली से जो रत्न मिलते हैं, जिसको उसकी जितनी कदर है, जितना उसको वो धारण करके दान अगर रखता भी जाएगा तो भी उसके रतन टिकेंगे नहीं। आप देखो कोई खाना खाता जाए हजम ही ना हो तो क्या होगा, तीसरे दिन कहेगा भूख नहीं है। अगर साथ साथ उसका हजम होगा तो अगले दिन भूख लगेगी। इसी तरह से ज्ञान रतन लेकर या तो अपने जीवन के लिए यूज करो या सेवा में, सेवा भी कोई भाषण करना सेवा नहीं है, ये समझते हैं भाषण करना सेवा है, ये एक सेवा है। आप तो बाबा ने सबके लिए सेवा बता दी है, भाषण करने वालों की सेवा को तो बाबा ने कहा ये उससे पदम पदम गुना दूसरी सेवा है। तो वो क्या है, आप चलते फिरते सेवा कर सकते हो, मनसा से ही सेवा करनी है ना, अपनी अपनी स्टेज से सेवा करनी है, अपनी स्थिति से सेवा करनी। कोई कहे क्रोध मुक्त हो जाओ, क्रोध मुक्त हो जाओ, क्रोध मुक्त हो जाओ, क्रोध की परिस्थिति नहीं आए तो क्रोध मुक्त कैसे हो गए, लेकिन आप सेवा कर रहे हो, बीच में कुछ ऊपर नीचे हो गया, आपकी अवस्था कैसी रही, अगर आपकी अवस्था ठीक रही आप पास हो गए। इसी प्रकार से जिस भी चीज से आप मुक्ति चाहते हैं वो कर्म में आएंगे तो करेंगे। तो बाबा के ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाना, अनुभव में लाकर उसको यूज करना, जिस जिस फील्ड में भी आप हैं, चाहे घर में हैं, चाहे पढ़ते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, तो उसको लिमिट से निकाल के उसको इस तरह से यूज करना, ये हमारे बाबा के दिए हुए खजाने को दान करना है। तो नेचुरली दूसरे पर असर पड़ेगा, ये हिला नहीं, ये इस परीक्षा आई ये तो खड़े रहे, इसमें क्या शक्ति है, मेरे में भी होनी चाहिए। तब बाबा ने कहा कि मैं आपके मस्तक में क्या देख रहा हूं, आपकी वाणी में क्या देख रहा हूं। एक बारी बाबा ने वाणी पर मुरली चलाई थी, जैसे 12 मसाले किसी चीज में डाले जाते हैं, कैसी वाणी होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, युक्ति युक्त हो, योग युक्त हो, शक्ति युक्त हो, ऐसे स्नेह युक्त हो, कई बातें बताई थी। इसी प्रकार से बाबा ने कहा आपकी मुस्कान रूहानी होनी चाहिए, आपके हाथ किस तरफ जाने चाहिए, आपके पांव किस तरफ जाने चाहिए, टोटल इंद्रियों का बाबा ने वर्णन करके बताया, लेकिन बेसिक बात यह कि आपकी बुद्धि किस तरफ जानी चाहिए, उससे बाकी चीजें आप ही जाएंगी। इसलिए एक बहुत अच्छी मोर बाबा ने दिया है कि तुम अगर पुरुषार्थ पुरुषार्थ करोगे तो पुराने कमजोर अपनी ताकत याद आएगी, इतनी मेरे में है इतनी नहीं है। अगर इसको छोड़कर अपने संपूर्ण स्वरूप को सामने लाओगे, आपको पता ब्रह्मा बाबा इस कमरे में भी बैठते थे या क्लास में भी जाते थे, जो हिस्ट्री हॉल में क्लास है, तो ब्रह्मा बाबा ने अपनी गद्दी के पास जहां आजकल बाबा का ट्रांसलाइट है वहां लक्ष्मी नारायण रखा हुआ था ट्रांसलाइट, और बाबा उसको देख के ना इतना नशे में रहता था, ऐसे ऐसे पैर भी हिलाता था, बस खुश होता था कि ये मैं बनने वाला हूं, अपना आज का और अपना कल का रूप सामने रखता था, रख रख के उसी तरह के संस्कार भर भर के, जिसको प्रारब्ध के संस्कार कहते हैं, बाबा ने संपूर्णता प्राप्त कर ली। क्लास में भी जाता था तो सामने लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट पड़ा रहता था, अपना लक्ष्य सामने रखता था हर समय, ये नहीं कि चित्रों पर आधारित था, सारा टाइम तो वहां नहीं बैठते थे बच्चों को सिखाने के लिए। इसी प्रकार से हमें भी अपना लक्ष्य जो है, जो हमारा कल है, उसको बहुत दूर करोगे विनाश कितनी देर में आएगा, अंदाजा लगाओगे अभी तो शांतिवान बना है, अभी तो और सेवा चलेगी, फिर विनाश है। जो ऐसा करने वाले वो पुरुषार्थी टाइप के हैं कि भाई वेट करते रहो, कल को तुम्हारा शरीर छूट गया तुम्हारा तो होगी छुट्टी है, कोई बड़ा छोटा बचता तो यानी बड़ी बड़ी दादियों का भी छूट जाता है, साधारण का भी छूट जाता है, इसलिए हर समय को अंतिम घड़ी मानना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण का हर सांस जो है वो नया है, नया जीवन होता है, हर समय ब्राह्मण नया जीवन लेता रहता है। इस वास्ते पास्ट को भी नहीं देखना, अगर आप पास्ट को देखोगे तो भी आपको आएगा इतने साल तो हुआ नहीं, अब क्या हो जाएगा, अभी बाबा कह रहा अभी करो, लास्ट टाइम बाबा ने देखो कितनी युक्ति से पूछा था, अगर तुमको 3 महीने चाहिए तो भले बता दो बाबा 3 महीने की छुट्टी दे देगा, है ना, सबसे पूछा, बोलो 3 महीने बाद करोगे या अभी करोगे। जिसने मन में 3 महीने में कर लेंगे ये सोचा, उसका हुआ ही नहीं, क्यों, कि वो बाबा ने जानबूझ के पूछा, जिसको करना है अभी करना है, अभी नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी, क्या पता कल क्या हो। और बाबा ने समय का भी बताया है कि समय को देखते हुए, हम लोगों को तो आने वाले समय का पता नहीं, समय तो ऐसे ही चलता रहेगा दुनिया, लेकिन समय अपनी संपूर्णता को पा रहा है, और समय के अनुसार आज हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए। तब बाबा ने कहा कि अब ये पुरानी चाल जो है, पुरुषार्थी हूं, अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है, ये छोड़ो और क्या करो, आसान तरीका बताया कि दानी बन जाओ, ठीक है, दान करते रहो, सहयोगी बन जाओ। ब्राह्मणों को तो दान नहीं किया जाता, कलयुगी ब्राह्मण तो दान लेते हैं, हमारे संगम युगी ब्राह्मण तो दान देते हैं, तो ब्राह्मणों को सहयोग रूपी दान दो। सहयोग देना तो है ना, अच्छा ये ऐसा करे तब मैं इसको सहयोग दूं, इसने मेरे साथ ठीक तरह नहीं बोला था इसलिए अब मैं इसको बताऊंगा, इसको भी मौका आने तो मैं भी इसको ऐसे ही करूंगा, अच्छा ये जो है ना ये प्रेम से बात करता है इसको ज्यादा चीज दे दो, ये नहीं करता इसको जली हुई रोटी इसको टका दो, है कच्ची वाली, इसको भी पता लगे कि मेरे साथ तुमने ऐसे किया था, ये सब क्या है। जिसको भी जो भी सेवा है, अच्छा सेवा को अपना चार्ज समझ के, कोई काम मिला है सेवा उसमें भी अपना पराया सोचना है, ये मेरा है ये तेरा है, ये इसकी अच्छा व्यक्ति है ये ऐसा नहीं है, तो अमानत में ख्यानत करने वाली बात है। बाबा तो कहते हैं तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे पास अमानत है, जो तुम्हें दिया भगवान की अमानत समझो, अपना भी है भगवान की अमानत समझो। एक तो अपने आधार से चलते हैं, फिर दूसरे दूसरी आत्माओं का आधार ले लेते हैं कि चलो एक अकेला दो ग्यारह इसके साथ मिलकर के हम सेवा करेंगे ना, बहुत ताकतवर सेवा हो जाएगी, एक दूसरे के सहयोगी हैं। उससे भी बाबा ने सावधान किया है कि तुमको किसका आधार लेना है। कभी कभी बाबा साधु सन्यासियों को हरनाक्षप वगैरह क्यों कहते थे, इसीलिए कि भगवान से हटाकर अपने में किसी को फंसाना, मैं शिवो हम हूं है, कुछ ना कुछ तो देते ही होंगे जो लोग उनके पास जाते हैं, थोड़ी बहुत शांति भिक्षा वगैरह, लेकिन भगवान से हटा दिया, शिव से हटा के खुद को शिवो हम कह दिया। बाबा कहता था ये तो मेरे से बेमुख करते हैं। तो जो आत्माएं भगवान से, अभी मुरली का गीत, अभी गीत जो बजा वो भी क्या था, किसके किससे प्यार कराते, चलो प्रभु का प्यार सबके दिल में बसाओ ना, ये थोड़ी कि अपना बसाते चलो। इसलिए सबसे बड़ा रॉन्ग काम जो ब्राह्मणों का कर सकते हैं, सबसे बड़ा, और जितने भी हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार देह भान ये सब छोटे हैं, सबसे बड़े से बड़ा कमजोरी अगर ब्राह्मणों की होती है वो ये होती है, किसी भी मनुष्य आत्मा से प्रभावित होना, चाहे वो ब्राह्मणों में हो या किसी भी मनुष्य आत्मा को प्रभावित करना। इसका मतलब क्या, भगवान से बेमुख होना, भगवान से बेमुख करना। तब बाबा कहता है कि दूसरे के साथ उसका संबंध ना जुटा के शिव बाबा के साथ जुटाओ, क्योंकि कल बाबा ने साफ साफ कहा है अगर कोई आत्मा आपको कुछ देती भी है तो किसका दिया हुआ देती है, शिव बाबा का दिया हुआ ही देती है ना, तो आप सीधा शिव बाबा से कनेक्शन क्यों नहीं रखते। अब अकबर की कहानी भी सुनाते हैं ना, आपने सुनी होगी कि भाई एक भिखारी गया अकबर के पास, उसने कहा कि कुछ बादशाह से लेना है दान। उसने कहा बादशाह जो है ना अंदर भगवान को अल्लाह को याद कर रहा है। उसने कहा अच्छा बादशाह के पास तो सब कुछ होता है, वो क्यों याद कर रहा है, क्या मांग रहा है। तो उसने कहा मुझे दिखाओ, तो वो कह रहा था हे अल्लाह मुझे ये दे, मुझे अच्छी अकल दे, मुझे ये दे। अच्छा उसने कहा ये भी भिखारी मैं भी भिखारी, अगर ये मैं छोटा भिखारी ये बड़ा भिखारी, अगर ये उससे ले सकता तो मैं भी उससे क्यों ना ले लू, इससे क्यों लू। अब ये तो कहानी है, लेकिन बाबा ने इसको हमें स्पष्ट बताया है कि बच्चे तुम अगर किसी आत्मा से लेने की नजर रखते हो तो दाता हुए। कितने फाइन डेफिनेशन बाबा ने लेवता की दी है। हम दुनिया वालों को भाषण करके सुनाते हैं दुनिया वाले सब लेवता हैं, सतयुग के पूर्वज देवता थे, देवताओं का हाथ ऐसे रहता था, देवताओं का हाथ ऐसे रहता है। आजकल सभी लोग लेना चाहते हैं, देना कोई नहीं चाहता, इसीलिए वर्कर में झगड़ा होता है, मालिक में झगड़ा होता है, ये सब बोलते हैं। लेकिन बाबा ने क्या कहा कि लेवता अगर आप किसी से उम्मीद रखते हैं कि ये ऐसा करे तब मैं ऐसा करूं, ये बदले तब मैं बदलूं, इसका स्वभाव संस्कार ठीक हो तब मेरा ठीक हो, ये अपना रुख बदले मैं ही झुकता रहूं सदा, ये भी तो झुके। तो बाबा कहते ये 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 इच्छा किस चीज की है, ये लेवतापने की है, ये भी लेवतापन है कि हम कहें ये अपने अवगुण का दान दे तब मैं इसके साथ ठीक व्यवहार करूं, तो लेवता हो गए ना। इसलिए बाबा ने कहा है कि लेवता जो होगा वो देवता नहीं हो सकता है, समझेंगे बहुत सेवा कर रहे हैं हम, दूसरों को दे रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तब बाबा ने कहा हुआ किस वृत्ति से, किस स्टेज से रहकर आप सेवा करते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। सेवा तो सब करते हैं, एक होता नाम मान की सेवा, वो भी कहते हैं हमें तो कोई नाम मान नहीं चाहिए, ठीक है अच्छा। एक होती है स्वार्थ की सेवा, इसकी मैं सेवा है तो सबकी करनी है, इसकी करूंगा इसके बदले में ये मेरी करेगा, इसको मैं अच्छी तरह से गर्म सब्जी खिलाऊंगा ये मुझे बिस्तरा नया देगा, एग्जाम्पल है, इस ये ऐसे करूंगा ये मेरे पार्टी आएगी उसको अकोमोडेशन अच्छी देगा, आओ भाई जी आओ 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 उसका ध्यान रखेंगे, तो ये भी सेवा में गड़बड़ है, क्योंकि इसके पीछे छोटा मोटा पाई पैसे का कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा हुआ। वो जो आपको दे रहा है वो भी भगवान के घर से ही दे रहा है, लेकिन आप उससे पर्सनल कनेक्शन जोड़ के अपने ईश्वरीय निर्बंधन प्रारब्ध रूप से हट रहे हो। इसलिए बाबा कहता है प्रारब्ध रूप यहाँ ये नहीं है कि यहाँ आराम तल भी शुरू कर दो, काम करना घटा दो, मेहनत करनी बंद कर दो, अपनी ड्यूटी भी नहीं करो। वाह, अब तो बाबा ने कह दिया प्रारब्ध स्वरूप है, यही संस्कार पढ़ो, प्रिंस की तरह चलो, रॉयल्टी से कुछ नहीं है। आगे साधारण साबुन यूज करते थे, बढ़िया यूज करना शुरू कर दो, अब तो जी शुरू हो गई हमारी प्रारब्ध, या कपड़े महंगे ले आओ, ऐसा नहीं है। प्रारब्ध ये है, संस्कारों की प्रारब्ध, कि हमें जीवन मुक्त, हमारे जो व्यवहार है, हमारी जो सेवा है, बाबा ने कहा अपनी अपनी ड्यूटी में ही फंस गए हैं, क्यों दान नहीं करने के लिए टाइम निकालते, कि जो ड्यूटी मिली है ना उसको अच्छी तरह करना, ये ईश्वरी सेवा है, ये नहीं है। बाबा ने कहा बहुत सारा समय जो ड्यूटी मिली उसको ही देते हैं। अगर आज आपको कोई कह दे, अभी आपको बहुत काम है 3 घंटे का, कह दे कि अच्छा 1.5 घंटे बाद कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है, लेकिन जो काम पूरा कर ले वो चला जाए, तो आप 3 घंटे का काम 1.5 घंटे में करोगे ना? खाना भी खाओगे, अच्छा कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है, जो 10 मिनट में खाना खाते फटाफट, लाओ भाई लाओ जल्दी जल्दी, अच्छा क्यों? कि ख्याल है कि वो इंटरेस्ट की चीज है। इसी प्रकार से मान लो बाबा नहीं आना है, चलो बाबा कहते हैं कि अच्छा भोजन करके आओ, फिर पार्टियां मिलेंगी, कितनी जल्दी जल्दी भाग भाग के दूसरे को धक्का देकर भी भोजन करके आते हैं। तो जब अर्जेंसी होती है तो व्यक्ति वही काम हाफ टाइम में करता है। तो बाबा ने कहा कि आप ड्यूटी में फंसकर, अगर कोई काम नहीं है, संडे का दिन है, तो आराम से करते हैं। तो बीके को तो सारा दिन आराम ही होता है, दुनिया वालों की भेंट में तो कम काम करना पड़ता है, बड़ी रॉयल्टी से, अच्छा चलो दिन पार हो गया। तब बाबा ने कहा ये नहीं, आपको अपनी ड्यूटी को से टाइम बचा करके सेवा में लगाना है, और ड्यूटी भी ड्यूटी समझ के नहीं, बहुत अपनी स्टेज बनाने के आधार से निस्वार्थ होकर और अथक बन के। एक होता है आपके टाइम पर कोई आ गया, आपकी भोजन खिलाने की ड्यूटी है 9 बजे तक कोई आ गया खिला दिया, कोई 9:15 आया तो आपके तेवर चढ़ गए कि ये क्या है, इस व्यक्ति के लिए मैं बैठा रहूं, मैं इसका नौकर हूं क्या है, इसका रख दो खाना वहां चलो। तो वो उस पॉइंट पे आपकी सेवा देखी जाती है, वो पता नहीं किस हिसाब से लेट आया, लापरवाही से आया या जरूरत से, आपको ये नहीं देखना आपकी स्टेज क्या है। ये आपका टेस्ट है कि एक्स्ट्रा में ही टेस्ट होता है। अगर आपके पास 10 रोटी आपने 4 खानी है, 6 किसी को दान कर दी, वो कोई दान नहीं है। अगर 4 ही है और उसमें से दान करोगे तो दान है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने अपने समय में से समय निकाल के, अपने आराम में से समय निकाल के, और अपनी अवस्था को ठीक रखते हुए सेवा की। इसलिए बाबा ने कहा है कि महादानी का अर्थ क्या है, कि बाबा से, बाबा के पास तो अथा है, हम महादानी अपनी ताकत से कैसे बनेंगे, हमारे पास तो थोड़ा थोड़ा है। इसलिए बाबा से लेकर के दान करते रहोगे तो आपका तो भरपूर ही रहेगा ऑटोमेटिकली, और आपके हाथ से पुण्य कर्म होता रहेगा, आपकी अवस्था आप ही बन जाओगी, आप दान देने में बिजी हो जाओगे। मान लो कोई कहे आप क्रोध पर भाषण करो, है जी, तो आप क्या क्रोध करोगे? क्रोध पर भाषण करते हुए आपका ध्यान, आपके क्रोध के संस्कार होंगे भी तो मर्ज करके भाषण करोगे, है कि भाई क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध बहुत तंग करने वाली चीज है, इससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अच्छा, इसी तरह से जब आप दान कर रहे हैं किसी चीज का, तन एज में जाना हो, सिल्वर एज में जाना हो, तो ग्रहण छुड़ाने के लिए दान जरूरी है। तो बाबा ने ये युक्ति बताई है कि दाता के बच्चे दान करना शुरू कर दो, तो आपको वो जो सारा दिन फिक्र रहती है ना, इस पे पुरुषार्थ करना, उस पे पुरुषार्थ करना, ये करना, वो खत्म हो जाएगी। तो आपकी जीवन मुक्ति का अर्थ क्या है, हर कर्म आपका आपको ऐसे लगे फ्री है। अब दादी को बाबा ने क्या कहा कि इस बच्ची को मैं एक्स्ट्रा ताकत देता हूं। जब बाप देखता है कि बच्चे एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, तो बाप उसको एक्स्ट्रा रिफ्रेश भी कर देता है नेचुरली। कोई भी पिता होगा तो बच्चा कुछ जरा एक्स्ट्रा करेगा, उसको शक्ति देगा। इसलिए यहां थकने का भी सवाल नहीं है, जितना आप एक्स्ट्रा करेंगे बिना कहे आपको बाबा फील होगा। आपको काम ज्यादा करोगे लाइट ज्यादा रहोगे, काम कम करोगे भारी रहोगे, क्योंकि दान पुण्य किया ही नहीं। तो ब्राह्मण का काम है दान करना, यदि आपने अपनी ड्यूटी नहीं की, दान करने वाले ने दान नहीं किया, तो भारीपना तो आएगा ही, बोझ चढ़ेगा शरीर मनसा के ऊपर, फिर योग नहीं लगेगा, फिर कहेंगे सुबह बैठे तो सही, लेकिन इधर उधर ध्यान भटकता रहा। क्यों भटकता रहा? क्योंकि अपनी ड्यूटी ठीक नहीं करेंगे फिर तो निमित्त मात्र बैठे टाइम के लिए। इसलिए बहुत सहज बाबा ने बताया है प्रारब्ध क्या है, रॉयल्टी। कौन सी रॉयल्टी? ड्रेस की नहीं, संस्कारों की। रॉयल संस्कार, देने वाले, देने वाला रॉयल होता है, लेने वाला भिखारी होता है। भगवान से भी मांगना नहीं है, बाबा से लेकर दान देना है वो ठीक है, अपने लिए मांगना ये खत्म। तब बाबा ने कहा कि अब थोड़ा टाइम जो बचा है उसमें आपको बहुत जरूरत है अपने मन को एकाग्र करने की, मनोबल भरने की। जो कमजोर होता है उसमें मनोबल नहीं होता, जो मनोबल वाला होता है वो शेर भी सामने आ जाए ना उससे भी बच जाएगा, और कमजोर होगा वो गीदड़ से भी भागेगा। कमजोर है क्योंकि ये शेर ही ना हो, पता नहीं क्या कर दे मेरा वो, जो उसको वहम होता है, वहम की बीमारी वो कमजोर को होती है। बड़े से तो ताकतवर से तो डरते हैं, तो माया कैसे आएगी? माया तो अंधेरा है, रोशनी के आगे माया कैसे आएगी? तब बाबा ने कहा है जरूरत है इस समय अपने को ऊंचा ले जाकर, अपनी जो आपकी अनादि स्टेज है, आत्मा की स्टेज, पावरफुल बाप के पास परम धाम में बैठकर और एकाग्र होकर अपनी एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने की। और उस शक्ति को फिर क्या करेंगे? जैसे बिजली स्टोर नहीं हो सकती, वो शक्ति आपकी स्टोर नहीं हो सकती, वो यूज हो सकती है। उसको आपने सारे विश्व की आत्माओं को उसको सकाश के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में, शुद्धि करने के रूप में दान करना। ये तो हर एक कर सकता, जो भाषण कोई नहीं कर सकता ना करे कोई, ये तो हर एक कर सकता है, किसी को मना नहीं है। बूढ़ा है, बच्चा है, बीमार है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा, सब कर सकता है। ये ताकत बाबा ने कहा, फिर बाबा सोच में पड़ गए सीरियस होकर, ये ताकत आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत काम आएगी। क्यों? कि अपनी बुद्धि को जिस समय जहां लगाना चाहो वहां मोड़ना चाहो, वो मोड़ने की शक्ति, मोल्डिंग पावर जिसको कहा जाता है, प्योर गोल्ड मोल्ड हो जाता है और अलॉय वाला गोल्ड सख्त होता है। तो अपने मोल्डिंग पावर मन की बढ़ाने के लिए आपको ये मनसा पावर अपनी ऐड करनी है। तो योग में बाबा ने काम दे दिया, आगे ऐसे ही बैठ जाते थे, अब सुबह उठ के बैठो और बीच में भी जितना टाइम मिले, बाबा ने कहा था ये एक ड्रिल है, रूहानी ड्रिल है, जैसे शरीर वाले एक्सरसाइज करते हैं, ड्रिल करते हैं, ऐसे ही ताकत के लिए रूहानी ड्रिल क्या है, अभी अभी शरीर से बाहर चले जाओ, अभी अभी आ जाओ। ब्रह्मा बाबा तो अपने अंतिम दिनों में बात करते करते एक सेकंड के लिए गुम हो जाते थे, फिर आके बात शुरू कर देते थे। रुचि घटती जाती थी, बच्चे दिवाली बनाते थे, पटाखे पटुके ले आते थे। अंत के दिनों में बाबा ने कहा ये क्या है बच्चे, ये क्या है, है? बचपना लगता था। तो बाबा ने इसीलिए कहा सबकी वानप्रस्थ है, चाहे छोटा बच्चा है, ये नीली शॉल वाला बच्चा है, चाहे कोई दूसरा है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। इस वास्ते हर वक्त रेडी रहकर इस पावर को बढ़ाएं। क्यों? कि आपकी अवस्था तब देखी जाएगी जब खूब हलचल होगी, और उस समय आप अचल रह सके। मान लो अभी भूचाल आना शुरू हो जाए, ये हॉल आपका हिलना शुरू हो जाए, आप उस वक्त योग में एकाग्र रह सकते हो? बाबा ने करवा के भी दिखाया कि एक सेकंड के लिए सारे सब बच्चे जो है, तो सबने कहा एक सेकंड तो हो सकते हैं, है ना, क्योंकि बाबा सामने बैठा है, बाबा शक्ति भी दे रहा है। लेकिन ये तो बाबा ने सैंपल दिखाया, ऐसे लगातार इस अभ्यास को हमें बढ़ाना है। तो बहुत सारे बाबा के बच्चे बॉडी कॉन्शियस तो नहीं है, लेकिन कर्म कॉन्शियस है। जो ड्यूटी मिली हुई है वो समझते ये ईश्वरी सेवा, यही मेरा ईश्वर है, यही मेरी प्राप्ति है, यही मेरी प्रारब्ध है। जो भी जिसको काम मिला हुआ उसमें इतना खो जाते हैं काम में, कि अपनी स्थिति बनाने का और विश्व सेवा का, विश्व कल्याण का और आने वाले टाइम का भूल जाते हैं। इसी जीवन में जो मिला हुआ है ईश्वरी त्याग का भाग सेवा के रूप में, उसमें लग जाते हैं। तब बाबा ने कहा कि नहीं, अब आपको कर्म यहां हो, ये साधारण है, ये तो आपको निमित्त मिला हुआ है, इस कर्म के द्वारा भी आपने सेवा करनी है अपनी स्थिति से और अपनी स्थिति को और पावरफुल बनाना है। तब अगर सारे बच्चे मास्टर दाता बनेंगे, दूसरे को ना देखकर मास्टर सहयोगी बनेंगे। कई ऐसे हैं जिनको आप सहयोग देंगे ना तो बहुत काम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर जुल्म क्या करते हैं, उसके बिहेवियर की वजह से उससे सहयोग हटा लेते हैं कि चलो मैंने सेवा ही करनी है ना, मैं इस सेंटर पे क्यों जाऊं जहां तो कोई खाना भी नहीं पूछता, ठीक तरह बात भी नहीं करता, वहां जाऊं जहां स्टेशन पे लेने आते हैं, बड़ी अच्छी तरह रिसीव करते हैं, गिफ्ट भी देते हैं। तो क्या हुआ, उससे सहयोग विड्रॉ कर लिया उसके बिहेवियर की वजह से। तब बाबा ने कहा कि नहीं, आपको सबको सहयोग देना है, वो उसका बिहेवियर नहीं देखना कि वो ऐसे करे तो मैं ऐसे करूं। ये करना भी लेवता के संस्कार है। जहां जरूरत है, जिसको भी आवश्यकता और आपके पास वो चीज है, आप उसको दान दोगे, आपकी बढ़ेगी, आपका पुण्य कर्म बनेगा। इस वास्ते चाहे व्यक्तिगत व्यवहार में चाहे सेवा में न्यूट्रल रहकर बाबा बाबा करके बाबा के निमित्त हम कर रहे हैं तो आपको उसके शक्ति मिलेगी, वरना फिर यही उसका फल मिल जाएगा टेम्परेरी। किसी के आपने कर दिया, उसने आपका कर दिया, एक ने कहीं दूसरे ने मानी, दोनों ज्ञानी यहीं पर बराबर हो गया, आगे के लिए तो कोई प्रारब्ध बनी नहीं। प्रारब्ध नहीं बनेगी तो मनोबल नहीं आएगा, मनोबल नहीं आएगा तो फिर आपको ऐसा लगेगा अगर अभी कुछ हो गया क्या होगा, वरना आपको दृढ़ निश्चय रहेगा दुनिया इधर की उधर हो जाए। तब बाबा ने कहा कि शुरू में अकेले ब्रह्मा बाबा ने कमाल करके दिखाई, ऐसी रौनक दिखाई, ऐसा जलवा दिखाया जो उसको लोगों को कृष्ण दिखता था। दादी हमेशा बताती है कि मैं जब देखती थी मुझे कृष्ण दिखता था। अच्छा, अब बाबा कहता अब तो मेरी हजार भुजाएं हैं, सहस्त्र भुजाएं हैं, हर एक भुजा भी अगर अपनी अपनी उंगली लगाएगी और अपना अपना जलवा रूहानियत का दिखाएगी तो तब बाबा ने कहा क्या 9 लाख प्रजा बनना, क्या ये सारा समय समीप आएगा। और वो ही हमारा फर्ज भी बनता है। बाप ने कहा कि आपको मेरा रिटर्न करना है मेरे स्नेह का, और फर्ज भी बनता और अपने भी हित में है कि कमाई भी हो जाए, बाप का ऋण भी उतर जाए, अपनी प्रारब्ध भी बन जाए, समय भी समीप आ जाए और हम यहाँ प्रारब्ध का अनुभव करें, इससे अच्छी बात क्या हो सकती। फिर बाबा ने कहा शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, ये कि कल का प्लान बनाओ, कल करेंगे परसों करेंगे, करना शुरू कर दें। ठीक है, तो पुरुषार्थी शब्द खत्म, त्रेता वाला नाम लेना ही नहीं, कभी मुंह से सपने में भी नहीं निकलना चाहिए हम पुरुषार्थी हैं। अपने वो वाले संस्कार को आगे लाके नए नए कपड़े यूज करो, पुराने को किसी स्टोर में डाल दो, आप ही किसी दिन वो उड़ जाएंगे। ओम शांति।